जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर 19, 20, 21 साल में शादी कर दी जाती है लड़कियों की। कहीं ना कहीं एक डर भी आता है कि पता नहीं मेरी शादी अब कैसी जगह पे होगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो क्या मैं कुछ करूँगी नहीं, क्या मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। 24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आपका बेबी है, आपको उसका ध्यान रखना है, उसको बड़ा करना है। अब एक सवाल था कि अगर मैं बाहर कहीं काम करने जाती हूँ तो फिर बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, अगर गाइडेंस नहीं है तो आप समझ नहीं पाते कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। Hey everyone, my name is Kanchan Keshri. आज से 5 साल पहले ये नाम एक आम नाम था जिसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि इस नाम ने कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिस पर लोग तालियां बजाएं। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, आज जिस मंच पर मैं खड़ी हूं, जोश टॉक्स, जहां से आपने बहुत सारे लोगों के स्टोरीज सुनी हैं और हर एक स्टोरी के पीछे की स्ट्रगल को भी सुना है। गाइस, अगर मैं इस बात को कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि स्टेज पर पहुँचना ही अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करते हैं जो सबको पसंद आता है, तभी आप यहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइस, आज मैं भी अपनी स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्टोरी से आप भी कुछ सीख सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। क्योंकि आज से 5 साल पहले मैं भी एक हाउसवाइफ हुआ करती थी। हाउसवाइफ होने में कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि हाउसवाइफ की जो जॉब होती है ना, वो सबसे ज्यादा टफ होती है, क्योंकि आप अकेले पता नहीं कितने लोगों का ख्याल रखती हैं। लेकिन फिर भी ये जो दुनिया वाले हैं, ये यही कहते हैं कि इतना पढ़ लिख लिया फिर भी तुमने कुछ किया क्यों नहीं, क्यों हाउसवाइफ बन के रह गई। तो मेरे मन में भी एक इच्छा हुआ करती थी हमेशा कि मुझे भी कुछ करना है, और ये हाउसवाइफ बनने से पहले का सपना था, बचपन से मुझे भी कुछ करना है, ये सोच हमेशा यहाँ रहती थी। शुरुआत से ही मेरी एक इच्छा थी कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ, और इसी इच्छा और सोच को लेकर मैंने चैनल की शुरुआत की थी, जिसका नाम है इंग्लिश कनेक्शन, जहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और सिखाती हूँ। गाइस, आज के टाइम पे मेरे चैनल पे 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और सब ये मानते हैं कि इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं, आसान है। मैं प्रयागराज के एक छोटे से टाउन सिरसा से बिलोंग करती हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर इंग्लिश को हवा माना जाता है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती हैं। अब तो फिर भी समय बदल गया है, जब मैं छोटी थी उस टाइम पर मेरा जो मकान था वो कच्चा मकान था, मिट्टी का घर। कच्चा मकान आप सभी जानते हैं कि बारिश के टाइम पे छत टपकने लगती है, फिर आप नीचे बाल्टी वगैरह रख के किसी तरीके से मैनेज करते हैं। मैंने अपनी माँ को सब कुछ मैनेज करते हुए देखा है, और वहीं से शायद एक अंदर एक ख्याल आता है कि मुझे कुछ करना है ताकि मैं इस कच्चे मकान को पक्के मकान में बदल सकूं। जब इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, सो आई एम श्योर कि कोई भी अगर इस तरीके से ठान लेता है तो लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ करता है। एक चीज मेरे साथ हमेशा से अच्छी रही कि मेरी माँ टीचर रही हैं, और वहां से जो मुझे इंस्पिरेशन मिलती रही पढ़ने की और पढ़ाने के भी। तो बचपन से ही मम्मा मुझसे पहले भी बोला करती थी कि कंचन तुम बड़े हो के पढ़ाना। सो अगर मैं ये आपको बताऊं कि बचपन में मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में नहीं था, लेकिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा था, आप मुझे बुक वॉर्म भी बोल सकते हैं, मतलब मुझे किताबों से बहुत प्यार था। और ये जो लाइन होती है ना कि किताब आपका सच्चा मित्र होता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर था। जब आपके पेरेंट्स में से कोई एक टीचर होता है ना, तो उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, मतलब कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, लोग आपको इस चीज से जज करने वाले हैं कि आपकी मदद आपके पेरेंट ने की है। दैट मींस कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो और क्लास के बच्चे ये कहने वाले हैं आपको कि आपकी मदद की गई है, आपको पेपर दिखाया गया है तब आप फर्स्ट आए हैं, आप में इतना जज्बा नहीं है। जब मैं प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़ी, जहाँ पर मेरी मम्मा टीचर नहीं थी, वहाँ भी इस चीज़ को साबित करने की ज़रूरत थी, लेकिन साबित करने के हिसाब से नहीं चलना था। मैं साबित करना नहीं चाहती थी, मैं केवल और केवल अपना बेस्ट देती थी। जब भी आप किसी भी चीज़ में अपना बेस्ट देते हैं, लेट मी टेल यू गाइस, आप हमेशा सबसे अच्छा करते हैं। सबसे अच्छा नहीं बनना है, अपने से ही बेहतर बनना है, इस चीज़ को हमेशा फॉलो कीजिए। आई ऑलवेज से बेटर योरसेल्फ। जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर 19, 20, 21 साल में शादी कर दी जाती है लड़कियों की। मेरे खुद की दोनों दीदियों की शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये चल रहा था कि ग्रेजुएशन होते ही मेरी भी शादी कर दी जाएगी। तो गाइस, ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसा फेज था कि पहली बात कि उस टाइम पे मुझे लगता था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे फर्दर स्टडीज करनी है, और दूसरा वहाँ ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उसके लिए मुझे प्रयागराज जाना पड़ता सिटी में। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं एक टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो सिटी में जाके एग्जाम दिलाना एक बड़ी चीज़ थी, और आगे करना है या नहीं करना है ये भी एक सवाल था, क्योंकि गाइडेंस की भी कमी होती है। आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं, गाइडेंस की कमी होती है। अगर गाइडेंस नहीं है तो आप समझ नहीं पाते कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। द सेम वॉज विद मी, मैं भी सोच रही थी कि आगे क्या करूँगी, लेकिन एक चीज़ था कि रुकना नहीं है, जितना टाइम है शादी से पहले पढ़ते रहना है, क्योंकि शादी कहाँ होगी ये पता नहीं होता है, तो पढ़ते रहना है और साथ में कुछ करते रहना है। तो क्या कर सकती थी मैं घर से ट्यूशन क्लासेस दे सकती थी। मैंने पैसे को देख के शुरुआत ही नहीं की थी, मुझे तो सिखाना था जो मैंने अपनी माँ से सीखा था। हम दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ाते थे, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती थी। जब हम साथ में बैठते थे तो एक चीज़ मैंने अपनी माँ से और सीखी कि जैसे 4 से लेके अगर मुझे 6 बजे तक पढ़ाना है या मान लीजिए 5 बजे तक पढ़ाना है, तो मैं 5 बजे बच्चों को छोड़ देती थी, लेकिन मेरी माँ 5:30 तक पढ़ाती थी। मैंने एक दिन उनसे सवाल किया, मम्मा क्यों आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हो? बोलती हैं मुझे लगता है और सिखा दो। उस दिन मुझे ये चीज़ लगा कि सिखाना कितना मैटर करता है, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं और वो लाइफ में आगे जाकर कुछ बनता है तो वो आपको ज़रूर याद रखता है। आप दुनिया में कितने पैसे कमाते हैं, कितना नाम कमाते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप किसकी कितनी मदद कर देते हैं और उसकी वजह से उसकी लाइफ बन जाती है, ये मैटर करता है। गाइस, वही रीज़न है कि आज मैं उस लैंग्वेज को सबको सिखाना चाह रही हूँ जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, ताकि जब वो अपने सपने पूरे करें तो कहीं ना कहीं कंचन नाम याद रखें। मैं सिर्फ ट्यूशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहती थी, कुछ और भी करना चाहती थी। इच्छा थी कि मैं किसी स्कूल में जाकर पढ़ाऊँ, कुछ और भी एक्सप्लोर करूँ। तो जब मैंने पापा के सामने ये बात रखी तो पापा ने कहा कि तुमने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन जो जॉब करना है तुम्हें या जो भी तुम्हें अपनी लाइफ में करना है वो शादी के बाद करना, क्योंकि जो वो चाहेंगे तुम्हें उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक डर भी आता है कि पता नहीं मेरी शादी अब कैसी जगह पे होगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो क्या मैं कुछ करूंगी नहीं, क्या मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, ये सवाल अंदर से डरा देता है आपको। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी थॉट आता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, बट वो भी पॉसिबल नहीं। आप अपनी बात इतनी ईजिली नहीं रख सकते कि मुझे शादी नहीं करनी। उसी तरीके से मेरी भी शादी हुई, बट लकीली मुझे बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे हस्बैंड, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला, जिसमें मुझे इस चीज़ के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं ना कर पाऊँ। तो आज शादी हुई, शादी के बाद मैं दिल्ली आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते थे। लोग हनीमून पे जाते हैं, लोग इंजॉय करने जाते हैं, लेकिन मैं इंटरव्यूज़ के लिए गई। मैंने शुरुआत कर दी उस सपने को पूरा करने की जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। पहले इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुई, लेकिन कुछ हर्डल्स आते हैं। जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सूट करे कि आप ऐसा ही करना चाहते हैं और वही आपको मिले, ठीक है, तो इतना अच्छा सब कुछ नहीं होता। तो उसी तरीके से उस जॉब की टाइमिंग सही नहीं थी, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग थी, मेरी नई नई शादी थी, तो मैंने वो जॉब कंटिन्यू नहीं की। उसके बाद मैं फिर इंटरव्यूज़ के लिए गई, फिर मेरा एक सिलेक्शन हुआ, 2-3 इंटरव्यूज़ मेरे से नहीं निकले, लेकिन फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, जहाँ पर वो जो जॉब थी वो रोटेशनल शिफ्ट थी, कभी रात, कभी शाम, कभी सुबह। तो ये जो चीज़ थी ये परिवार वालों को एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि बीइंग अ गर्ल, आप सभी जानते हैं, इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर मैं रात में कहीं बाहर निकलूं तो मैं टाइम से घर पहुंचे कि नहीं, दूसरे भी सो नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जॉब भी मेरे हिसाब से नहीं थी। उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हुई, और प्रेगनेंसी में रोटेशनल शिफ्ट वाली जॉब तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती, ये सोचकर मैंने वो जॉब छोड़ दी। और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है एज अ हाउस वाइफ, जिसमें कि मैं पूरा समय अपना अपने परिवार को और खुद को देने में लग गई। फिर जब मेरी बेबी एडी पैदा हुई तो जैसे सभी बिजी हो जाते हैं, मैं भी बिल्कुल बिजी हो गई। 24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आपका बेबी है, आपको उसका ध्यान रखना है, उसको बड़ा करना है। तो वो जो सोच थी कि कुछ करना है, मैं भी कुछ करूंगी, वो कहीं खो गई थी उस टाइम पे। लेकिन एक टाइम फिर आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि मुझे कुछ करना था, मैं कहाँ इन सब चीज़ों में बिज़ी हूँ। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन क्या मैं मैनेज कर सकती हूँ अब भी सभी चीज़ों को। तो वो एक दौर था जो मेरी ज़िंदगी में आया जब मेरी बेटी एडी 1 साल की हो गई। जब वो 1 साल की हुई तो मुझे ये फील होने लगा कि अब मेरे पास थोड़ा टाइम बच रहा है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे कि मैं अपने बच्चे का भी ध्यान रख लूँ और साथ ही साथ मैं कुछ काम भी कर लूँ। अब एक सवाल था कि अगर मैं बाहर कहीं काम करने जाती हूँ तो फिर बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? अगर मैं इसको डे केयर में डालती हूँ तो क्या ये वहाँ पर सेफ रहेगी? क्या सब कुछ बिल्कुल हैप्पी होगा या नहीं होगा? बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो जैसा कि जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी उस टाइम पर मैं वीडियोज़ ज़रूर देखती थी इंग्लिश में इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने में इंग्लिश भी मायने रखती है और साथ ही साथ आप किस तरीके से जवाब देते हैं वो भी मायने रखती है। सो उस टाइम पे मेरे मन में एक चीज़ आया कि मैंने इंग्लिश पढ़ाया है अभी तक, मैंने ट्यूशन क्लासेस दिए हैं, तो क्यों ना मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ूँ, क्यों मैं किसी और दिशा में जाऊँ? क्योंकि जब आपके पास जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है आप वो और अच्छे से करते हैं, क्योंकि सिखाने की इच्छा तो हमेशा से थी, तो क्यों ना यूट्यूब वीडियोज बनाकर ही मैं लोगों को सिखा सकूँ। और इसमें आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, आप पूरी दुनिया में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से शुरू हुई यूट्यूब की जर्नी, जब मैंने यूट्यूब वीडियोज बनाना शुरू किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने सोच तो लिया कि मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है? कैमरा तो है नहीं मेरे पास, उसके अलावा ना तो स्टूडियो लाइट्स हैं, कैसे बनाना है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं वीडियोस को, और वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग कॉपी पेन पर भी वीडियो बनाते हैं फोन के थ्रू। तो बस वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे उस टाइम पे, क्योंकि उस समय मेरे पास वही चीज़ें थी, मेरे पास कॉपी थी, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक स्मार्टफोन था, और बस रिकॉर्डिंग करना बाकी था। क्योंकि मेरे मन में कंटेंट ऑलरेडी चल रहा था कि मुझे बताना क्या है, मैंने एक कंटेंट सोच लिया कि मुझे ये बताना है। अब चैलेंज आता है कि आप कैसे बनाएंगे, साउंड कहीं बाहर से अगर कुछ आ जाती है तो वीडियो ख़राब हो जाती है, एडिटिंग कैसे करना है कुछ भी पता नहीं, तो वन गो में मुझे वीडियो बनानी है। बस मैं ट्राई कर रही थी कि अगर ये अच्छा बन जाता है तो मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, लेकिन एक गो मतलब वन गो में आपको बिना किसी कटिंग के वीडियो बनानी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, जहां मेरे पास 1 साल की बच्ची थी। तो दोपहर में मैंने बेबी को सुलाया, फ़ैन ऑफ किया और फ़ोन को कुछ इस तरीके से पकड़ा और नीचे लिखना शुरू किया। रिकॉर्डिंग करती जा रही हूँ और लगातार बोलना है, लेकिन बाहर से हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हम एक ऐसे घर में रहते थे जो बिल्कुल चौराहे के बगल में, मतलब दिन भर गाड़ियों की आवाज़ आती रहती थी। और जो हमारा घर था वो भी छोटा सा था, टॉप फ्लोर पे 1 रूम किचन सेट था, तो वहाँ पर आवाज़ को बंद करना बहुत ही मुश्किल था। तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रात का ऑप्शन बचा, मतलब रिकॉर्डिंग अब रात में होगी। पहली वीडियो शूट करके ही ये समझ में आया कि रिकॉर्डिंग रात में होगी, लेकिन मैंने कहा कि अब शुरुआत की है तो उसको करते हैं। मैंने उस वीडियो को बनाया और शाम को जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मैंने उनसे बोला कि मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसको पोस्ट कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड रूप मेरा साथ ज़रूर देंगे और वो इसे करेंगे। डिस्कशन हुआ था कि मैं यूट्यूब वीडियोज बनाऊंगी, बट ये भी साथ में था कि चलो रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं फिर करेंगे, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे अभी करना है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो शुरुआत आपको अभी से कर देनी चाहिए। तो उस दिन मैंने वीडियो बनाई, शाम को जब रूप घर आए तो मैंने कहा कि आप इसको पोस्ट कर दीजिए। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी, तो जो मेरा पहले की आईडी थी उसी पर उन्होंने उसको पोस्ट किया। फिर हमने नाम बाद में सोचा कि हमको चैनल का नाम क्या रखना है। वीडियो पोस्ट हो गई, मतलब शुभारंभ हो गया, शुरुआत हो गई। अब पहली वीडियो तो जो मैंने बनाई उसमें तो मैंने फेस दिखाया नहीं, तो उसके बाद जो मेरे हस्बैंड का रिएक्शन था वो ये था कि अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हें सामने आना चाहिए, अपने फेस के साथ वीडियो बनाओ, अपनी आइडेंटिटी फेस के साथ बनाओ, सिर्फ नाम के साथ नहीं, क्योंकि सिर्फ नाम बताने से काम नहीं होता है, अपना फेस अगर सामने लाओगी तब ज्यादा अच्छे से लोग समझ भी पाएंगे और तुम्हें रिस्पेक्ट भी देंगे। तो फिर मेरे मन में आया ठीक है करते हैं, वो बोर्ड लेकर आए और शुरुआत हुई कि अब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है प्रॉपर, अभी सिर्फ और सिर्फ जो मैं कॉपी और पेन पे पढ़ा रही थी अब मुझे बोर्ड पर पढ़ाना था। तो अब कैमरा फेस करने वाली प्रॉब्लम आई, पहली वीडियो में मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि हर एक बार ये सोचना कि आपको कोई देख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होता है। भले ही आपको पता है कि अभी ये जा नहीं रहा है आपके पास, लेकिन फिर भी ये मन में होता है कि नहीं, ये मैं कैसे करूँगी, वो मुझे देख रहे हैं, कहीं मुझसे कुछ गलती हो गई तो इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने ये बोला कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है एडिट हो जाएगा, वी लर्न हाउ टू एडिट द वीडियोस, हम देखेंगे सीखेंगे कि कैसे एडिटिंग करनी है, तुम बस रिकॉर्डिंग करो, तुम बस सिखाओ, जो तुम्हारी इच्छा है उस चीज़ को करो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग शुरू होती है और रिकॉर्डिंग के लिए बोर्ड आ गया, लाइट्स नहीं थे, किसी भी तरीके से हम बेड पर पिलोज को रख के, एक ही बेड होता था एक रूम में, वहीं पर बेटी सो रही है, साइड में पिलोज रख के उसके ऊपर कुछ फ्लैट चीज़ रख के उस पर फ़ोन को रखना और सामने मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लाइट को मेरे हस्बैंड इस तरीके से पकड़ के खड़े रहते थे। मतलब वो जो मोमेंट था ना, उस टाइम रियलाइज़ होता है कि आपके साथ और लोग भी स्ट्रगल करते हैं, वो भी आपका साथ देते हैं, लेकिन वो साथ तभी देते हैं जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब आप दिखाते हैं कि आप में पोटेंशियल है। अगर मैं ये कहती ही ना कि मैं कर सकती हूँ तो वो क्यों मेरा साथ देते। तो जब मैंने ये कहा कि मैं ये कर सकती हूँ और उन्हें दिखाया कि मैंने ये किया है, देखिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऑल द वुमेन आउट देयर, कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो उस चीज़ को दिखाइए, अपना पोटेंशियल जब आप दिखाएंगे तब और लोग आपका सपोर्ट करने आएंगे और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे वीडियोज शुरू हो गई, डालना मैंने शुरू कर दिया। शुरू में कुछ भी नहीं पता था, कैसे क्या करना है, इनकम आती है नहीं आती, कुछ भी नहीं पता था। फाइनली वो दिन आया 10 महीने बाद जब मेरे यूट्यूब से पहली इनकम आई। तो वो सफर जो एक पेन और पेपर से शुरू हुआ, आज वो टाइम है जब मेरे चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मैं 80 लाख से भी ज्यादा लोगों की मदद कर पा रही हूँ। जो एक सोच थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, वो आज यहाँ पहुंची है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, इफ आई कैन यू कैन, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो ज़रूर से कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो वही लड़की हूँ, एक साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं भी वही हूँ जो आप हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि अभी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाद में करूँगी, तो इस थॉट को ड्रॉप कर दीजिए। आप बोलिए मुझे अभी ही करना है, क्योंकि मैंने कितनी कहानियां देखी हैं जिसमें कि आप सभी को ये लगता है कि अगर अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ तो 2 साल बाद करूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी होगी। और कई बार ये होता है कि आप कहते हैं शादी के बाद करूँगी, शादी के बाद बेबी हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि जब बेबी 5 साल का हो जाएगा फिर करूँगी, लेकिन 5 साल का जब तक आपका बेबी होता है तब तक आप सारी चीज़ें पीछे छोड़ाए होते हैं। आप ये कहते हैं कि अब तो मैं भूल गई हूँ, अब मैं कैसे करूँगी, अब नहीं होगा मुझसे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, उसी टाइम पे आपको शुरुआत कर देनी है, उसी टाइम पे, द वेरी डे, मतलब आज थॉट आया है ना तो आज ही शुरुआत कीजिए। अगर आपको इस वीडियो को देख के थॉट आ रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो जो आप कर सकती हैं उसकी शुरुआत आज से, अभी से कर दीजिए।
अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।
படும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு வெறி
that fear of the unknown is the strongest at this point.
என்ன கஷ்டాలు, மரென்ன கண்ணீళ్లు, తినడానికి కూడా భోజనం లేని సందర్భాలు ఏంటి? সেখানে পৌঁছতে চাইছি সেটার জন্য যে পথটা দিয়ে হাঁটছি সেটাকে কি আদৌ স্ট্রাগল বলা চলে?
আমি কন্ট্রোল জানার আতলে নহতে এক বার মানে ডিসাইড করলি তো আমি আপনি ভি নাই শুনতি
জীবন সিচুয়েশন আলি ಏನೇನ್ क्वेश्चंस বরতো ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಣ ಅಂತ
ಇದೆ ಚಾನೆಲ್ ದೇ ಉಪರ ಇಹೇ ಜೇ ಇನ್ಸಾನ ನಾನೇ ಆಉಣಾ ಜಡೇ ಜೀರೋ ತೋ ಚಲ್ಲ ಕೇ ಆಪದಾ ಉಪರ ತಕ ಪಹುಂಚೇ
ದೋಸ್ತೋ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ಆಪಕೋ ಕೋಯಿ ಜಗೆ ನೀ ದೇತಾ ಹೈ ಆಪಕೋ ಅಪನಿ ಜಗೆ ಖುದ್ ಬನಾನಿ ಪಡ್ತಿ ಹೈ
Most important thing is that Josh is coming.